जैसे अपन किसी कमरे में बैठे हों और उसमें दो तरफ खुलने वाली दो खिड़कियां हों। खिड़कियां हमने खुद अपनी सुविधा के लिए लगाई हैं, हम चाहें तो उन्हें खोलें, नहीं चाहें तो नहीं खोलें। और एक खिड़की तो खुलती है बगीचे की तरफ और एक खिड़की खुलती है कचरा घर की तरफ। तो अब कौन सी खिड़की खोलनी है ये भी हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम बगीचे की तरफ वाली खिड़की खोलते हैं तो सुगंध आएगी, और अगर हम कचरा घर की तरफ की खिड़की खोलते हैं तो कमरे में दुर्गंध आएगी। बस ऐसा ही है, अगर हम शुभ कर्मों का द्वार खोलते हैं तो शुभ कर्म आते हैं, अशुभ काम करते हैं तो हमारे मन वचन काय की अशुभ क्रिया के द्वारा अशुभ कर्मों का आवागमन हमारे भीतर आता है और पूरे जीवन में दुर्गंध फैल जाती है। इसी तरह से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म अनादि काल से मन वचन काय की क्रिया के द्वारा इस जीव के अंदर आत्मा में आते रहते हैं और वे अपना निश्चित समय तक रहकर फल दे करके चले जाते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कैसे हम इस आश्रव से बचें, और आश्रव से बच करके ही हम तंबर और निद्रा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आश्रव तत्व को जानना भी आवश्यक है, क्योंकि आश्रव और बंध के द्वारा ही संसार होता है, और हमें संसार से मुक्त होना है तो संसार के कारणों को भी जानना पड़ेगा। आश्रव ही वास्तव में संसार का कारण है। और आश्रव का क्या कारण है, तो कहते हमारे परिणाम ही आश्रव के लिए कारण है। जैसे हमारे परिणाम होते, जैसी हमारी मन वचन काय की चेष्टा होती है वैसा आश्रव होता है। जो कम से कम मन वचन काय की क्रिया को करेगा उसमें कमती आश्रव होगा, और इतना ही नहीं मन वचन काय के साथ जैसी हमारी कषाय होगी वैसा जो है आश्रव और बंध दोनों ही उसके अनुसार होगा। हम देखें कि आचार्य भगवंत हमें किस प्रकार योग समझते हैं। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की क्रिया के द्वारा होने वाले आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम योग है। अपने भीतर निरंतर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या शरीर से हो, कोई भी क्रिया होती है तो आत्म प्रदेश परिस्पंदन, उसी का नाम योग है। काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय की क्रिया को ही योग कहते हैं। आश्रव और वही योग आश्रव है, आश्रव का कारण होने से उसे भी आश्रव कह दिया। जैसे एक पंडित जी वचन का के लिए पहुंचे, नए शहर में पहुंचे, तो मंदिर में पहुंचे तो वहां तो कोई था नहीं, तो उन्होंने माली से कहा कि जाओ दो चार लोगों को बुला के ले आओ। तो माली गया और दो चार लोगों को बुला के ले आया। अब बुला के ले आया तो एक से पूछा कि भैया आपका परिचय, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रिक्शे वाला हूं। अरे तो आपको बुला के ले आया वो? हाँ मुझे ही बुला के ले आया कि आपको बुला रहे हैं। नहीं नहीं आपका कोई ज्यादा हमें काम नहीं है, आप जाइएगा। दूसरे वाले से पूछा कि भैया तुम काय के लिए आए? बोले वचन का के लिए। और भी जो तीन चार लोग थे वे भी वचन का के लिए आए, पर उसमें से एक व्यक्ति जरा यंग दिखाई पड़ रहा था, तो उससे कहा कि देखो हमें शाम को यहाँ इस गाड़ी से लौटना है, हो सके तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दो। उसने कहा हम करवाए देते हैं। और बाकी जो लोग बचे उनसे कहा कि आओ बैठो, हम तुम्हें चार बातें धर्म की सुनाते हैं। तो सुनाने लगे उसी में से जो है, और वचन का एक घंटे की खत्म होने पर बाकी लोग तो चले गए। एक अपना सामान यहाँ वहां रखने लगा तो पूछा कि भैया तुम कैसे आए? तो बोले हम भी यहाँ पर नए हैं और हम यहीं रुके हुए हैं। तो बोले ठीक है फिर अपन यहीं रुकते हैं, शाम को हम आपके साथ में चलेंगे। क्या हुआ, सारी आश्रव और बंध की प्रक्रिया इस तरह से होती है। हमने जो लोगों को बुलाया वो हमारे मन वचन काय की चेष्टा से आए, इसी तरह कर्म हमारे आत्मा में आते हैं। अब हमारे व्यवहार पे निर्भर करता है, रिक्शे वाला है जाओ भैया हमें तुम्हारा काम नहीं है। ऐसे ही कुछ कर्मों को हम तत्काल विदा कर देते हैं, उनका ज्यादा हमारे साथ संबंध नहीं होता। और दूसरे को कहा कि रिजर्वेशन करवा लाओ, आधे घंटे में वो रिजर्वेशन करवा के लाया, उससे हमारा संबंध आधे घंटे का रहा, जिनको वचन का सुनाई उनसे घंटे भर का रहा, और एक आदमी ऐसा मिल गया जो को हमारे साथ ट्रेन में भी जाएगा तो उससे और ज्यादा लंबे समय का हो गया। ऐसा ही कर्मों का हिसाब है, हम बुलाते हैं और फिर उनके साथ जैसा व्यवहार करते, जैसी हमारी कषाय होती सो वैसे भी हमारे साथ ठहर जाते हैं। मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से कर्म आते हैं, उसी का नाम आश्रय है। योग शब्द का जैन दर्शन में ही विशिष्ट अर्थ है मन वचन काय की परिस्पंदनात्मक क्रिया, वरना योग का अर्थ जुड़ना भी होता है और योग का अर्थ ध्यान भी होता है, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है। यहां तो मन वचन काय की क्रिया का नाम ही योग है और वही आश्रय का कारण है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय का कहलाता है। शुभ और अशुभ कर्मों के कारण होने से शुभ और अशुभ योग होता हो ऐसा नहीं है। ये नहीं समझना कि शुभ कर्मों का आश्रय करने वाला शुभ योग है, नहीं, शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय करता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे शुभ परिणामों के द्वारा जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है और पाप प्रकृतियों में कम पड़ता है, क्योंकि संक्लेश और विशुद्धि ही कर्म बंध में कारण बनती है। संक्लेश के होने पर पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ जाता है और जो विशुद्धि है, मंद कषाय का नाम विशुद्धि है, तीव्र कषाय का नाम संक्लेश है, तो जो विशुद्धि है उसके द्वारा पुण्य का बंध। यहां पर यही आशय लेना कि शुभ योग के द्वारा पुण्य का और अशुभ के द्वारा पाप का आश्रय होता है। सकषाय कषायो सांप्राय क्रिया पथियो, दो प्रकार का आश्रय होता है, सांप्रायिक आश्रय होता है, क्रियापथ आश्रय होता है। सांप्रायिक अर्थ कहलाता है कषाय, तो कषाय सहित होने वाला आश्रय सांप्रायिक आश्रय कहलाता, और जिस जो कषाय के अभाव में सिर्फ मन वचन काय की क्रिया रूप योग के द्वारा होता है वो क्रियापथ आश्रय कहलाता है। उस क्रियापथ आश्रय में कर्म आते तो हैं लेकिन स्थिति और अनुभाग सिर्फ एक समय का पड़ता है, आते हैं और चले जाते हैं। आचार्य महाराज एक उदाहरण देते हैं इसके लिए कि जैसे टिन शेड लगा हुआ है और उस पर पानी बरसता है तो क्या होता, वो टिन शेड पर गिरता है और नीचे निकल जाता है, आता है और चला जाता, ये कहलाता है क्रियापथ आश्रय। जब दसवें गुण स्थान में समस्त कषायों का उपशम या कि क्षय कर चुकता है आत्मा, तब ग्यारहवें या बारहवें गुण स्थान में पहुंचता है, तब उसके क्रियापथ आश्रय होता है। कषाय के अभाव में होने वाला आश्रय पर अपन सब संसारी जीवों के लिए तो कषाय सहित ही आश्रय की प्रक्रिया चलती है, उसे सांप्रायिक आश्रय कहते हैं। इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, जो सांप्रायिक आश्रय है वो कैसे होता है, तो कहते इंद्रिय के द्वारा, कषाय के द्वारा, अवृत असंयम के द्वारा और 25 क्रियाएं हैं उनके द्वारा होता है। इंद्रियां 5 हैं, कषायें 4 हैं, अवृत्ति 5 हैं और क्रियाएं 25 हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं, कहते जो सूक्ष्म आत्मा के ज्ञान कराने में कारण बने वो इंद्रिय कहलाती है। आत्मा की पहचान संसार में इंद्रियों के माध्यम से होती, एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव हैं, अपने अपने विषयों को वे इंद्रियां जानती हैं और उसी के माध्यम से आश्रय होता है। फिर कषायें, कषाय से तो अपन परिचित हैं, जो हमें कसें, हमारा घात करें वे कषाय हैं, या कि जो कषाय ले पदार्थ के समान हमारे साथ कर्मों को जोड़ देती हैं वे भी कषाय कहलाती हैं, या कि जो कृषि विलेख में ऐसा आता है तो कहते हैं जो किसान के समान खेत में हमारे सुख और दुख की फसल उगाती हैं वो कषायें कहलाती हैं। ऐसी परिभाषा कषाय की दी है। अच्छा तो ये है कि जो हमको कस लेती है वो कषाय, जो हमारा हमारे परिणामों को बिगाड़ देती है, हमारे परिणामों का घात करती है वो कषाय। इस कषाय के माध्यम से भी सांप्रदायिक आश्रय होता है। और पाप से विरक्त होने का नाम व्रत है और पाप से विरक्त न होने का नाम अव्रत है। तो पांच अव्रत हो गए, पांचों पाप जो है वो अव्रत कहलाएंगे, इनके माध्यम से आश्रय होता। और 25 क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आश्रय होता है। उन 25 क्रियाओं के नाम और थोड़े एक एक मिनट में अपन कर सकते हैं। सच्चे देव गुरु शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक दर्शन को बढ़ाने की क्रिया का नाम सम्यक वर्धनी क्रिया है। सबसे श्रेष्ठ क्रिया मानी गई है। देखो, चैत्र गुरु और शास्त्र की पूजा आदि करने रूप जो सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया है, इनसे हमारा सम्यक दर्शन बढ़ता है, निर्मल होता है। ऐसी ये सम्यक वर्धनी क्रिया, इसके द्वारा पुण्य का ही आश्रय होता है। और मिथ्यात्व क्रिया वीतरागी के अलावा रागी द्वेषी को भी भगवान मानकर गुरु मानकर उनके लिए पूजा करना, वो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया है, प्रयोग क्रिया है। कि आने जाने में होने वाली जो शरीर की प्रवृत्ति है वो सब प्रयोग क्रिया कहलाती है। इसके माध्यम से भी आश्रय होता है। समाधान क्रिया है, संयम की उपेक्षा करके असंयम की तरफ जो हमारा झुकाव होता है तब उसके द्वारा आश्रय होता है। इस क्रिया के द्वारा उसको समाधान क्रिया कहते हैं। सावधानी पूर्वक जो चलने की क्रिया है ईर्ष्यापथ क्रिया कहलाती है। इसके द्वारा भी अच्छे कर्मों का आश्रय होता है। प्रादोष की ओर ठीक से नहीं चलेंगे तो बुरे कर्म का आश्रय होगा। प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश में जो क्रिया होती है वो सब प्रादोष की क्रिया कहलाती है। काय की क्रिया, पाप भाव से युक्त होकर जो हम शरीर की क्रिया करते हैं, कार्य करने का प्रयत्न करते हैं, वो सब काय की क्रिया कहलाती। आधिकरण की क्रिया, हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करने की जो क्रिया है जिसमें हम हिंसा के उपकरण ग्रहण करते हैं वो कहलाती है आधिकरण की क्रिया। 25 क्रियाएं हैं भैया, बहुत लंबा हिसाब है। ये अध्याय सूत्र तो थोड़े से हैं लेकिन इसमें डिटेल्स बहुत है। पारिताप की क्रिया कहलाती प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया। और प्राणातिपात की क्रिया में पीड़ा क्या पहुंचाई, उनके प्राणों का वियोग ही कर दिया, ऐसी क्रिया की, उससे भी आश्रय होता। फिर दर्शन क्रिया, जो सुंदर रूप है उसको देखने के अभिप्राय से जो क्रिया की जाती है वो दर्शन क्रिया कहलाती है। स्पर्श करने योग्य वस्तु के स्पर्श करने की जो क्रिया है वो स्पर्शन क्रिया है। प्रत्यय की क्रिया में इंद्रिय विलास के नए नए साधन जुटाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो सब प्रत्यय की क्रिया कहलाती। समंतानुपात क्रिया, जो आवागमन का मार्ग है उस मार्ग पे ही अपना मलमूत्र इत्यादि विसर्जन कर देना, इसके माध्यम से भी आश्रय होता है, वो समंतानुपात क्रिया कहलाती है। अनाभोग क्रिया, अर्थात नहीं देखी नहीं सोधी हुई जमीन पर और बैठना उठना, इससे जो आश्रय होता है वो अनाभोग क्रिया के माध्यम से होने वाला आश्रय है। स्वाहस्त क्रिया, दूसरे के योग करने योग्यकारी था अपने हाथ से कर लिया, इसको जो है स्वाहस्त क्रिया कहते हैं। बहुत कठिन है ये मामला। दाढ़ी वगैरह दूसरा नाई बनाता है तो अपने हाथ से बना ली, तो दूसरे के करने योग क्रिया थी वो स्वयं कर ली। निषर्ग क्रिया कहलाती पाप के समर्थन की क्रिया है। और विदारण क्रिया, दूसरे के पाप को उजागर करने की क्रिया से भी आश्रय होता है। मैं बार बार क्यों ये चीज कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि दूसरा तो गलती करे सो वो तो उसने तो पाप का आश्रय किया ही, और आप उसकी गलती को उजागर करके अपने लिए पाप का आश्रय काय को कर रहे हो। ये है निसर्ग क्रिया, पाप के समर्थन की क्रिया करना। विदारण क्रिया, दूसरे के पाप को उजागर करने की क्रिया। आज्ञा व्यापादनी क्रिया, शास्त्र में कही गई क्रिया का पालन तो नहीं करना और उसका अन्यथा और उल्टा प्ररूपण कर देना, ये भी खूब चलता है। आज्ञा व्यापादनी, जैसा आगम में नहीं लिखा उससे विपरीत कथन कर देना और धर्म की स्वर्ग की क्रियाओं को तो छुड़वा करके पाप क्रिया में लगा देना। अनाकांक्षा क्रिया शास्त्रोक्त क्रिया का पालन तो करना लेकिन आदर पूर्वक नहीं करना, बिगाड़ सो डाल दो, हाँ करने पड़ रही है इसलिए यह अनाकांक्षा क्रिया कहलाती। आरंभ क्रिया पाप की क्रिया स्वयं करना, दूसरे को करते देख करके खुश होना, ये आरंभ क्रिया कहलाती। परिग्रही की क्रिया परिग्रह नष्ट ना हो जाए तो परिग्रह के संरक्षण के लिए जो उपाय करने की क्रिया है वो सब परिग्रही की क्रिया कहलाती। माया क्रिया ज्ञान और दर्शन के विषय में छल पूर्वक व्यवहार करना ये माया क्रिया कहलाती है। मिथ्या दर्शन क्रिया मिथ्या दर्शन के पोषक जो पुरुष हैं उनकी प्रशंसा करते रहना। और अप्रत्याख्यान क्रिया अर्थात त्याग रूप परिणाम नहीं होना बल्कि असंयम के परिणाम होना, उसके माध्यम से भी अशुभ का आश्रय होता है। ये सब क्रियाएं आश्रय के लिए कारण है। अपन देखो दिन भर में इन 25 क्रियाओं में से कौन कौन करते, तो सम्यक वर्धिनी क्रिया का समय तो कम है और बाकी 24 का समय बहुत है। सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया कितनी देर करेंगे, पूजा पाठ करेंगे उतनी देर, सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया बाकी सब क्रियाएं तो जो है संसार को बढ़ाने वाली है। ब्रह्मंड ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त विशेषा कहते आश्रम में विशेषता कैसे आती है, कहते जैसे परिणाम होंगे। तीव्र परिणाम है अंतरंग और बाह्य कारण की प्रबलता होने पर जो उत्कट परिणाम होते हैं वो कहलाते तीव्र परिणाम। और जैसे और मंद परिणाम उससे विपरीत जो है मंद परिणाम है, तीव्र मंद हो गए। कहते जैसे एक ही दृश्य है उसको दो लोग देख रहे हैं, एक जो है बहुत अभिरुचि के साथ देख रहा है तो उसके लिए उसके माध्यम से ज्यादा, और एक ऐसे ही कि हाँ चलते देख लो खड़े हो गए दो मिनट के लिए और चित्र देख लिया, उसको मंद भाव है, वो तीव्र भाव है और ये मंद भाव। तो एक ही चित्र को देख रहे दो लोग लेकिन दोनों के आश्रय अलग अलग प्रकार का होगा, किसी के अधिक होगा किसी के मंद होगा। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव ये मारने योग्य है ऐसा जान करके और फिर प्रवृत्ति करना, ये ज्ञात भाव हो गया। और हमारा मारने का भाव तो नहीं था लेकिन असावधानी पूर्वक कोई जीव हमारे पैर से मर गया तो ये अज्ञात भाव कहलाएगा। मारने के भाव से मारने में अधिक आश्रय है और मारने का तो भाव था नहीं लेकिन असावधानी पूर्वक कोई जीव मर गया तो उसके द्वारा कम आश्रय होगा। और अधिकरण, अधिकरण आधार को कहते हैं, जिसके आधार से होता है। जीव रूप भी हो सकता वो आधार और अजीव रूप भी हो सकता है। जैसे दो जीव हैं वे दोनों छू करके कोई चीज जान रहे, अब उसमें से एक इंद्री है और दूसरा संगी पंचेंद्री है, दोनों में के इंद्री विषयों में फर्क पड़ेगा, दोनों की क्रिया एक है पर आधार दोनों का भिन्न है, एक एक इंद्री जीव है और एक पंचेंद्री जीव है, एक इंद्री को कम होगा और पंचेंद्री को ज्यादा आश्रय होगा क्योंकि जीव के माध्यम से होने वाला ये आश्रय है। जिसकी जितनी अधिक इंद्रियां हैं भैया उसको पुण्य और पाप उतना ही अधिक है, एक इंद्री जीव ज्यादा से ज्यादा पाप करे तो पहले नरक से नीचे नहीं जाए, तो पुण्य करे से पहले सरक से ऊपर नहीं जाए, और संगी पंचेंद्री होवे और मनुष्य होवे और पाप करे तो साथ में नरक तक जाता, और पुण्य करे से मोक्ष भी जाता, जीवी बात है दोनों बात है। तो ये अधिकरण आधार पर निर्भर करता है और अजीव अधिकरण भी ऐसा ही है। जैसे कि एक मनुष्य है वो बहुत तीव्र अस्त्र के द्वारा दूसरे को मारता है तो उसमें तो ज्यादा है, और एक जो है ऐसा ही, एक तो सामान्य रूप से किसी को मैंने मारपीट कर दी और एक को शस्त्र के द्वारा मार दिया, दोनों में अधिकरण अलग अलग है कि नहीं। इसी तरह चित्र इत्यादि है, चित्र लगा हुआ है, कोई कोई चित्र बड़ा विवत्स होता है तो मन कैसा हो जाता, कोई चित्र बड़ा वीरस वाला होता है तो अपने अंदर भी जो है वैसा वीरता का भाव आ जाता, लड़ाई का चित्र देख करके कैसा लगता, वो सब अधिकरण बनते हैं। हमारे परिणामों के बिगाड़ने बनाने में जो अधिकरण बनते वे सब अजीब अधिकरण बन जाते हैं। फिर वीर अर्थात शक्ति विशेष, जैसी जिसकी शक्ति होगी उसके द्वारा उतना ही अधिक पुण्य और पाप होगा। दो व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि सेवा, दोनों सेवा करना चाहते हैं, एक बलवान है एक कमजोर है। अब जो कमजोर है वो अप्रसन्न रहता है कि सेवा कम कर पाता हूँ, बलवान है वो प्रसन्न रहता है कि मैं सेवा ज्यादा कर पाता हूँ। दोनों के आश्रम में फर्क है कि नहीं, दोनों की शक्ति का फर्क है, इसलिए उनके आश्रम में भी फर्क है। शक्ति होते हुए भी कम करना अच्छा काम और शक्ति नहीं होते हुए अच्छा काम अधिक करना, ये बात जुड़ी है। लेकिन शक्ति है और उसके द्वारा पुण्य भी उतना ही होगा और पाप भी शक्तिशाली के द्वारा उतना ही अधिक होगा। इसलिए वीर भी निर्धारित करता है कि आश्रय किस प्रकार का होगा। कितनी बातें हो गई, जैसा तीव्र भाव होगा, मंद भाव होगा, ज्ञात भाव होगा, अज्ञात भाव होगा, और जैसी शरीर की शक्ति होगी वीर होगा, और जैसा हमारा आधार होगा, हम एक इंद्री हैं या पंचेंद्री हैं, या कि हमने अजीब किस प्रकार का बाहर से निमित्त मिलाया है जिससे हमारे परिणाम तीव्र या मंद हुए हैं, ये सब जो है आश्रम में कारण बनते हैं। इसके माध्यम से आश्रम में विशेषता आती है। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण दो प्रकार के हैं और डिटेल में कर देते हैं अधिकरण के बारे में। तो अधिकरण जीव अधिकरण भी है और अजीव अधिकरण भी है। आद्यम संभ्रम्भ समारंभ आरंभ योग कृत कारकानुमत कषाय विशेष चतुष्ठ कहते हैं। पहला अजीव अधिकरण है जिसमें संभ्रम्भ समारंभ आरंभ अपन परिचित हैं। संभ्रम का मतलब है प्लानिंग करना, समारंभ का मतलब है कलेक्शन करना, और आरंभ का मतलब है एक्शन कर दिया। पाप की क्रियाओं को प्लान करना, फिर उसके हिसाब से मटेरियल कलेक्ट करना और फिर शुरू कर देना, ये कहलाता है संभ्रम्भ समारंभ आरंभ। इसके माध्यम से ये तीन प्रकार का हो गया, मन वचन काय और कृत कार्य तन्मोदना, वो तीन और ये तीन, सब तीन तीन का गुणा करो 27 हो गए, चार कषाय हैं, कुल कितने हो जाएंगे 108। तो ये जो ये जीव अधिकरण कहलाता है कि 108 प्रकार से हमारे अंदर कर्म आते हैं, ये जीव अधिकरण है। और अजीव अधिकरण क्या है, तो कहते अजीव अधिकरण में निर्वर्तना दो प्रकार की, निक्षेप चार प्रकार का देते आगे, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। कहते अजीव अधिकरण निर्वर्तना रूप है, निर्वर्तना का मतलब होता है रचना करना, और निक्षेप अर्थात रखना, और संयोग अर्थात मिलाना। तो निक्षेप चार प्रकार के हैं, निर्वर्तना दो प्रकार की है, संयोग दो प्रकार का है, और निसर्ग भी जो है वो तीन प्रकार का है। इनके अलग अलग जो है लक्षण भी दिए हैं। निर्वर्तना का मतलब मैंने कही आपसे कि रचना करना, प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, निक्षेप मतलब रखना, प्लेसिंग। मैं इसी भाषा में बोलता हूं, जल्दी समझ में आपके आएगा, डिटेल्स तो बहुत है इसके। संयोग का मतलब मिलाना, कंबाइन करना, किस तरह आप कॉम्बिनेशंस करते हैं इस पे भी आश्रय निर्भर करता है। निसर्ग मतलब प्रवर्तन करना, मूवमेंट बिहेवियर जिसको अपन कहते हैं इस तरह से। अब निर्वर्तना दो प्रकार की होती है, एक मूल गुण निर्वर्तना होती है, एक उत्तर गुण निर्वर्तना होती है। पांचों शरीर है, मन वचन काय है, श्वासोच्छ्वास है, ये जो अंतरंग साधन है उनके द्वारा जीव जो है शुभ और अशुभ क्रियाएं करता है, वो सब मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है। और जो बाह्य में प्रतिमा है, काष्ठ कर्म है, पुष्प कर्म है, जितना भी ड्राइंग व्राइंग है, ये सब साधन है जीव के शुभ अशुभ परिणामों में कारण बनते कि नहीं बनते। बहुत सोचिए तो बहुत माइन्यूट है कोई भी चीज अपने यहां पर जो अपन देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि एक बार व्यक्ति बाहर देखता है या किसी भी इंद्रिय के द्वारा किसी चीज को विषय बनाता है, एक साथ मन में हजारों प्रकार की चीजें उसके उत्पन्न होती हैं, आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, उसमें से एक आध पूरी होती, बाकी सब भीतर डिपॉजिट हो जाती हैं। इसी तरह तो कर्मों का आश्रय होता है, एक साथ सैकड़ों दरवाजे अपने खुले हुए हैं, जरा सा कोई भाव किया और कर्म आकर के अनंत अनंत प्रदेश एक साथ जो है कर्म वर्गनाएं आकर के और चिपक जाती हैं। वही चीज ये है, कोई भी कर्म हम करते हैं, पुष्ट कर्म, चित्र कर्म, बहिरंग साधन है जिनके माध्यम से जीव के शुभ अशुभ क्रिया होती है, वो सब उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। निक्षेप तो दो प्रकार का है, चार प्रकार का सॉरी, जिसमें किसी वस्तु को बिना देखे सोधे रख दिया, किसी व्यक्ति को कहीं रख दिया जहां रखना चाहिए था वहां नहीं रखा, फिर कहते हैं बिना देखे सोधे उतावली से वस्तु को रख दिया, तो ये सहसा निक्षेप कहलाएगा। और वो जो पहले कहा कि देख करके ठीक से बिना सौदे रख दिया तो दुष्प्रमार्जित कहलाएगा, बिना सौदी वस्तु को किसी वस्तु को रख दिया तो वो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता, और उपयोग के बिना ही चीज को कहीं रख दिया तो वो अनाभोग निक्षेप कहलाता। ऐसे निक्षेप पे भी अपन दिन भर यही तो करते हैं, चीजों की उठाधरी, उसके माध्यम से भी आश्रय होता है भाई। और संयोग, भक्तपान का संयोग और उपकरण का संयोग, प्रतिकूल अन्न आपस में मिला दिया, दो खाने की चीजों को गड़बड़ सड़बड़ मिला करके खाया तो उससे जो परिणाम बने या कि उससे जो इफेक्ट हुआ उससे भी आश्रय होता है। और उपकरण का संयोग है, अलग अलग प्रकार के जो उपकरण हैं, मुनि महाराज जी को विशेष रूप से ये प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है कि अगर कोई प्रायश्चित है तो भक्त पान संयोग नाम का भी प्रायश्चित होता, जिसमें कि दाल के साथ तुम्हें रोटी बहुत अच्छी लगती है, अब दाल अलग खाओ रोटी अलग खाओ, अलग अलग कर दिया, विवेक नाम का प्रायश्चित दे दिया, क्योंकि तुम संयोग जो है संयोग करते हैं अपन, ये चीज इसके साथ मिला के खाओ महाराज बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अच्छा, आश्रय भी ज्यादा होगा बाबा, स्वादिष्ट तो लगेगी उसके साथ में, क्योंकि आसक्ति ज्यादा हो जाएगी उसके मिलाने से। इसी तरह उपकरण का संयोग, पीछी कमंडलू, तो इसमें ये कहते हैं कि धूप में मान लो बैठे हुए हैं, धूप में से भी आए भीतर तो कमंडल ठंडे में रखा था, तो उस पीछी से प्रमार्जित करोगे तो थोड़ा रुक करके करना, क्योंकि ये गर्म है कमंडल ठंडा है, इस तरह का संयोग हो जाएगा तो जीवों की विराधना ज्यादा होगी, आश्रय भी अधिक होगा। इतनी सावधानी उपकरण इत्यादि की, ठंडे से लाई तो गर्म चीज को, इस तरह बहुत विवेक की आवश्यकता, ये इससे आश्रय होता संयोग से। निसर्ग मतलब मन वचन का है, तीनों की जो क्रिया है उसको ही बोलते हैं निसर्ग बोलते हैं, उसका जैसा व्यवहार होगा मन का वचन का काय का, इस तरह से बहुत शॉर्ट में समझिएगा, क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा है, थोड़े सूत्र हैं लेकिन बड़ा। तब आप देखिएगा विभिन्न कर्म, मोटा मोटा हिसाब, वैसे तो इनके बहुत सारे डिटेल्स हैं, हर एक कर्म के बंध में कई कारण बनते हैं, पर मुख्य कारण आचार्य भगवंतों ने हमें बता दिए, आठ प्रकार के कर्म हैं उनका आश्रय होता। आठ कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये आठ कर्म हैं। इन आठ कर्मों का निरंतर आश्रय होता, आयु कर्म का निरंतर नहीं होता, आयु कर्म का एक निश्चित समय है, आठ अपकर्ष काल में ही होता, बाकी सात कर्म तो सोते जागते आते जाते चलते फिरते हर स्थिति में आत्मा के साथ निरंतर आठों सातों कर्म जो है वो बंधते रहते हैं। स्थिति अनुभाग हमारी कषाय डिसाइड करती है, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा प्रकृति और प्रदेश, उसका नेचर और उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है कर्मों की डिसाइड होती रहती है मन वचन काय की क्रिया से, और ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी, कितनी देर तक रहेंगे और कितनी इंटेंसिटी से फल देंगे, ये सब हमारे कषाय के ऊपर निर्भर करती है। अब कहते हैं कि वो जो आठ कर्म हैं वो हमारे कौन से परिणामों के द्वारा उनका आश्रय होता है? तत्पदोष निन्नो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। अगर हम ज्ञानावरण दर्शनावरण बांधना चाहें तो क्या करें, या कि हम क्या करते हैं जिससे कि हमारे ज्ञानावरण दर्शनावरण बंध को, आश्रय को प्राप्त होते हैं? आश्रय या बंध दोनों एक साथ होने वाली क्रियाएं हैं। हालांकि अब देखिएगा प्रदोष क्या कहलाता है। तत्व ज्ञान की चर्चा के समय तत्व ज्ञान और ज्ञानी दोनों के प्रति भीतर ही भीतर जलते रहना, यह कहलाता प्रदोष। कठिन काम है, तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है तो जो तत्व ज्ञान है उसके और जो तत्व ज्ञानी है उसके प्रति भीतर ही भीतर जल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कहते हैं ये प्रदोष है। इससे आपके ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का ही आश्रय होने वाला। निन्नो, ज्ञान की चार बातें कोई पूछे तो उसे नहीं बताया, क्यों? बता देंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा हमसे ज्यादा ज्ञानी हो जाए, नहीं बताते हमें नहीं मालूम, ऐसा कह दिया। और या कि मालूम होते हुए भी नहीं बताना और पुस्तक इत्यादि नहीं देना, या कि जिससे सीखा है उसका नाम नहीं बताना, हमने तो अपने आप सीख लिया, भैया आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, कहां से पाया आपने? हमने अपने आप सीख लिया, किसी गुरु ने नहीं सिखा है, नहीं किसी गुरु ने, किसी किताब से नहीं, किसी किताब से नहीं, ना किताब का नाम बताना ना गुरु का नाम बताना, ये कह देना कि मैंने तो अपने स्वयं से, ये निन्नो कहलाता है। इसके द्वारा भी हमारा ज्ञान ढकता है, ज्ञान पर आवरण आ जाता, दर्शन पर भी आवरण आ जाता। मात्सर्य, जानकारी होते हुए भी ईर्ष्यावश दूसरे को नहीं देना। भाव ये है कि बता देने से दूसरे का ज्ञान बढ़ जाएगा, ये मात्सरी कहलाता है। दूसरे के अच्छे ज्ञान से ईर्ष्या रखना। और अंतराय, ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति के साधन में बाधा डाल देना ताकि वो ज्ञान प्राप्त ना कर सके। किताब विताब छुपा के रख दी, नहीं मिलेगी तो नहीं पढ़ पाएंगे। आसादन कर देना, दूसरे के द्वारा दी जा रही जानकारी का आदर ना करते हुए शरीर और मन ऐसा मोह बना लेना कि जैसे हाँ कछु नहीं देखा, अब कोई अच्छा समझा रहा हो और अपन मोह बनाए, या कि हाँ भाव ऐसे करेंगे कि हमें कछु रुचि नहीं है इसमें। ये सब अज्ञानतावश होता है, अपन को अभी ऐसी आ रही करी ऐसा सोई हो, लेकिन अज्ञानता जब आ जाती है तो ऐसा भी अपन कर बैठते हैं, ये आसाधना कहलाती है। डिसरिगार्ड, आदर नहीं रखना, भले ही आप अनादर नहीं कर रहे लेकिन ज्ञान के प्रति आदर नहीं रखना भी आसाधना कहलाती है। ज्ञान को तो आदर पूर्वक ही स्वीकार करना चाहिए, और उपघात, उपघात मतलब सही ज्ञान में भी दोष लगा दिया उसे गलत साबित कर देना, अहंकार वश ये हो जाता है। प्रदोष और उपघात में फर्क है कि उसमें प्रदोष में तो तत्वज्ञान और ज्ञानी के प्रति भीतर भीतर जल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उपघात में तो खड़े होकर के नहीं, ये जो आप कह रहे हो ये ठीक नहीं है आपका, इस तरह सही को भी झुटला करके। और कहते इसको ये कहते कि वक्ता की तरी लेना कि कितो जानत है कि नहीं जानत, ये कहलाता। ऐसा भाव आ जाता कई बार तो नहीं आ जाता, बस वही जो है हमारे ज्ञानावरण और दर्शनावरण में के आश्रय में कारण बनता है। आसाधना में तो ज्ञान का अनादर है, लेकिन उपघात में तो ज्ञान को अज्ञान ही कह करके ज्ञान का नाश कर देने का भाव है, ये बहुत तीव्र भाव होता है। हो सकता है सभी के लिए तो सावधानी रखना चाहिए। कई लोग कहते कि हमारा छह उपशम कमती है, छह उपशम माने समझते गुणों का आंशिक रूप से प्रकट होने का नाम छह उपशम है। सो ज्ञान जितना प्रकट हो गया है उतना ही ज्ञान का शोभसम कहलाता। आज जो है ज्ञान का शोभसम कमती क्यों है, क्योंकि हमने पूर्व में ये सब उपद्रव किए हैं ज्ञान के प्रति, इसलिए